Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari यद्वाणी प्रविशति विचित्रार्दियदां तदाकाराचिन्ना भवति निखिलाकारघटितां स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ नारायण 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 नचिकेता का प्रश्न है आप हमको वो ब्रह्म तत्व बताइए जो धर्म से परे है अधर्म से परे है कार्य से परे है कारण से परे है भूत और भविष्य और वर्तमान इन तीनों से परे है और इसको भी जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा आप हमको बताइए। सद्गुरु वो होता है जिसने उस तत्व का स्वयं अनुभव किया है और जो दूसरों को उसका अनुभव करा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने अनुभव किया हो वो करा भी दे। उसका कारण यह है कि शिष्य की योग्यता का आकलन ठीक ठीक जब तक नहीं होता है तब तक उसे क्या बताया जाए क्या नहीं बताया जाए ये विवेक पक्का नहीं होता है। अब जो फक्कड़ महात्मा होते हैं उन्हें तो एक ही बात बोलनी है चाहे कोई आ जाओ सामने, और जो श्रोत्रिय होगा वो ये देख करके बोलेगा कि ये इसकी कैसी योग्यता है, शास्त्रीय योग्यता है तो शास्त्र के हिसाब से बोलेगा, और केवल श्रद्धालु है तो उसको श्रद्धा के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात यह भी है कि अभी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले कि सब रास्ते जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, और ये भी लगता है कि जब सभी ठीक हैं तो कोई भी ठीक नहीं है। तो जो साधारण जिज्ञासु है वो भटक जाता है। तो यदि कोई वास्तविक सद्गुरु मिल जाए, अब मैंने क्वालिफाई कर दिया वास्तविक भी कह दिया सद्गुरु भी कह दिया, तब तो कोई खतरे की बात नहीं है, जो वो बतावे उसको आप स्वीकार कर लो। वो चाहे काखा गाघा सिखावे तो वो भी आपको एक दिन जो है एमए तक पहुंचा देगा, और जो बीए से शुरू करे वो भी आपको एमए तक पहुंचा देगा, जो हाई स्कूल से शुरू करे वो भी एमए तक पहुंचा देगा। जहां से जो शुरू करता है अगर खुद जानकार है तो आपको भटकाएगा नहीं, और सब रास्ते एक ना एक जगह आपस में मिल जाते हैं। ये पैरेलल रास्ते नहीं है कि बस चलते चले गए, एक कावेरी है और एक गंगा जी है, वो कभी मिलती नहीं है। अब नहीं मिलती तो सरकार कहती है इनका पानी जोड़ो माने एक जगह सूखा पड़े तो दूसरी जगह भी सूखा डालो। अरे एक जगह तो कम से कम ठीक चल रहा है तो एक जगह तो ठीक चलने दो। तो ये तो रास्ते आपस में पहले ही सब जुड़े हुए हैं, अंदर खाना सब महात्मा एक ही हैं। इसलिए महात्माओं में अश्रद्धा करने की कोई बात नहीं है। अपने योग्यता के अनुसार यदि कोई सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो जैसा वो बतावे वैसा विश्वास करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं तो हमारे अध्यात्म शास्त्र में तो जो तर्क वितर्क ज्यादा करता है ना उसको कनिष्ठ अधिकारी माना है, और जिसमें श्रद्धा ज्यादा होती है वो मध्यम अधिकारी, और जो उत्तम अधिकारी है वो गुरु से बहस नहीं करता है, गुरु की बात सुनकर के फिर विचार करता है और विचार करके फिर कहता है ये बात हमारी समझ में नहीं आई, इसे आप दोबारा बताइए, या उसकी कोई शंका हो तो वो शंका रखता है। और तर्क वितर्क करके वहीं काट देना ये कनिष्ठ अधिकारी माना जाता है। तो कनिष्ठ अधिकारी तो नहीं होना चाहिए, मध्यम अधिकारी हो इतना ही पर्याप्त है, उत्तम अधिकारी हो तब तो कहना ही क्या है। तो नारायण हम तो यही मान के चलते हैं कि सब मध्यम अधिकारी के हैं, इसलिए वेदांत में भी उपासना का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उपासना जो है वो वेदांत उसका खंडन नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी रूप से उसकी उपासना को बताता है। अब ये निधिध्यासन क्या है नारायण? बोले श्रवण करो, श्रवण से ज्ञान न हो तो मनन करो, मनन से भी ज्ञान न हो तो फिर निधिध्यासन करो। निधिध्यासन क्या है? ये उपासना ही है, ये निर्गुण उपासना है, एक अहंग्रह उपासना है, एक जो है साकार उपासना है, एक सगुण उपासना है। सब उपासना ही है, अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचा पहुंचा के सब छोड़ देते हैं। तो कल ये बात बताई थी कि यदि आत्मा को इस शरीर में ही मैं के रूप में पहचानना है तो तीन उसके ढंग हैं। सत के रूप से पहचानो, चित्त के रूप से पहचानो और आनंद के रूप से पहचानो। आप सीधे अद्वितीय रूप से नहीं पहचान सकते। तो सत के रूप से पहचानना क्या है कि आपको यदि समाधि लगा सकते हो तो समाधि का अभ्यास करो। जब आपका मन एक जगह एकत्र हो जाएगा तो अपने आप उसमें योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ये सत का विचार जो है ज्यादा टेढ़ा नहीं है, समझ लो ये परमात्मा ही सब चारों तरफ बैठा हुआ है। पंचभूतों के रूप में कौन है नारायण? आपने बनाए पंचभूत, हमने बनाए, किसने बनाए? ये सब बने बनाए तो ये परमात्मा ने स्वयं अपने को जाहिर किया है पंचभूतों के रूप से। अच्छा आपका शरीर किसने बनाया? जिसने पंचभूत बनाए उसने शरीर बनाया है। तो ये परमात्मा का सत स्वरूप है जो हमको दिख रहा है, इसमें ज्यादा मीमांसा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी दिखता है उसको परमात्मा की मूर्ति समझ करके मन में प्रणाम करना चाहिए। ये जो चित स्वरूप है ये वेदांत का खास प्रसंग है। चित स्वरूप माने ज्ञान स्वरूपता, और आनंद रूपता दो प्रकार की होती है। जब हम अन्य में आनंद को खोजते हैं तो उसी को भक्ति बोलते हैं, और जब स्व में आनंद खोजते हैं तो उसी को ज्ञान बोलते हैं। कोई दोनों में विशेष अंतर नहीं है, आनंद ही तो खोज रहे हो ना, स्व में खोजो चाहे अन्य में खोजो। अन्य में खोजते हैं तो भगवान आ जाते हैं सामने, स्व में खोजते हैं तो सब जगह से आनंद की बात दिमाग से हट जाती है, और एक जगह लौट करके जब आते हैं तो अपने में वो आनंद महसूस होने लगता है। देखो सुषुप्ति में, अब ये वेदांत में एक तो स्वप्न का दृष्टांत, एक सुषुप्ति का दृष्टांत, एक रज्जु सर्प का दृष्टांत, ये तीन चीजें जो हैं बार बार समझने की होती हैं। तो सुषुप्ति में आपको सुख रहता है कि नहीं मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये छोड़िए, सुख रहता है कि नहीं? सुख तो रहता है। तो सुख रहता है तो वहां जब सुख था, कुछ था ही नहीं, तो का सुख आया कहां से? कोई विषय नहीं था, कोई विषय ही नहीं था, कोई विषय विषय का संबंध नहीं था, संयोग नहीं था, तो वो सुख आया कहां से? तो वो आपके आत्मा का जो आनंद है वही आनंद निर्विषयता के उपाधि से प्रकट होता है, माने विषय ना होने पर भी वो आनंद प्रकट हो जाता है। तो जब आप चारों तरफ से अपने आप को खींच लेते हैं, वापस कर लेते हैं, तब आपका आत्मा का जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है। अब सुषुप्ति उसका उदाहरण है, सुषुप्ति जैसा आनंद नहीं है वो। सुषुप्ति में तो नींद मिली रहती है ना, तो वो तमोगुणी आनंद है। समाधि में नींद तो नहीं होती है, तो वो सत्वगुणी आनंद है। और ये वेदांत में जो है ना नींद है और ना सत्वगुण है, तो वो जो आनंद आता है वो वास्तविक आत्मा का आनंद आता है। जितना आप मन को फैलाते जाओगे उतना ही आनंद आपका ज्यादा भारी होता चला जाएगा, भारी अच्छे सेंस में नहीं बुरे सेंस में। हल्का आनंद जितना होता है उतना आनंद अच्छा होता है। आप 20 कचौड़ी खा जाओ नारायण तो आनंद तो खूब आएगा, लेकिन फिर परेशानी तो होगी ना। और जितना कम से कम खाओ एक ही कचौड़ी में उतना आनंद ले लो जितना 20 कचौड़ियों में खाने से आनंद आया, तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आनंद भी आ गया। तो आनंद जो है वो हल्का होना चाहिए। समाधि का आनंद ये सात्विक आनंद है, हल्का आनंद है, और सुषुप्ति का आनंद ये बोझल आनंद है। शरीर को तो ये ठीक कर देता है लेकिन मन को ठीक नहीं करता है। और समाधि में दोनों ठीक हो जाते हैं, शरीर भी ठीक हो जाता है मन भी ठीक हो जाता है। और यदि वेदांत विचार जग जाए नारायण कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, तो फिर आनंद मैं ढूंढ कहां रहा हूं? वो एक दृष्टांत क्या सच्ची घटना ही है महाराज श्री के जीवन की। वो वहां ऋषिकेश जाते थे तो रेती में बैठ के प्रश्नोत्तर होता था शाम को। तो एक सज्जन वहां कोई आए, साधक थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। बोले भाई जो बात करनी हो वो सबके सामने करो, अकेले में हमारा दिमाग खराब करने वाली चीजें लोग बोलते हैं। परमात्मा के संबंध में कोई प्रश्न करना है तो सबके सामने करो, उसमें क्या व्यक्तिगत है। तो उन्होंने कहा मैंने इतना साधन किया है, सब उन्होंने अपनी किस्सा सुनाया, लेकिन मुझे आनंद नहीं आता। थोड़ा लगता है कि आया और फिर खत्म हो जाता है, बस यही रहता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ कमी है, माने आनंद की पूर्णता नहीं होती। तो महाराज श्री ने कहा कि अच्छा जो मैं कहूं सो करोगे? बोले आप कहो तो मैं गंगा जी में कूद जाऊं, तो बोले गंगा में कूदने से अगर मिल जाता तो पहले ही कूद चुके होते, तो दुनिया भर के जो तुमने साधन कर रखे हैं तो एक साधन ये भी कर लेते, तो तुम्हारे अभाव में उस आनंद का अनुभव किसको होगा। शरीर को नष्ट करने से आनंद थोड़ी आएगा। तो बोले फिर तो जब सब लोग चले गए वहां से तो उन्होंने कहा अच्छा आसन बांध के बैठो। जिस आसन से भी बैठते होंगे वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि अब शांत हो ना। क्या? हाँ शांत है। अब तुम ये आनंद की आशा छोड़ दो। महाराज जी ने कहा कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, ये आशा छोड़ दो। तो बोला कि छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया तो अब बैठे रहो। महाराज जी तो उठ के चले गए। नारायण समझ लो 7:30-8 का टाइम हो गया होगा। फिर जाके भोजन वोजन किया तो दादा को भेजा कि भाई देखो वो आदमी बैठा है कि उठ के चला गया। तो वो आया कि तो महाराज बैठा है। बोले बैठा है तो चलो भाई देखते हैं क्या हाल है उसका। आए, आकर के देखा तो उसके कहीं नब्ज ही नहीं मिल रही थी। मतलब प्राण जो है उसका इतना सूक्ष्म हो गया, समाधि लग गई थी उसको। तो महाराज जी भी कुछ जानते तो थे ही सब क्रियाएं, तो उन क्रिया कुछ की प्राणों को नीचे लाने की। तो वो उठा, उठ के और उनके चरणों पर गिर गया। बोले आनंद में पूर्णता हुई कि नहीं हुई? बोले महाराज अब पूर्ण हो या अपूर्ण हो, अब मुझे आनंद की इच्छा ही नहीं है। इतना पूर्ण है ये। जब आप अपने से भिन्न वस्तु को चाहते हो तो आपका आनंद अपूर्ण रहता है। वो सुख तो होता है लेकिन आनंद जो है वो अपूर्ण रहता है। इसलिए कभी उसमें कृतकृत्यता नहीं आती है। तो ये वेदांत विचार जिसका जग जाता है उसका आनंद पूर्ण हो जाता है। उसे फिर किसी चीज की मोहताजी की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब चित्त की बात वेदांत में, तो आनंद की बात तो यह है कि ये स्थिति मूलक है। आप कुछ मत चाहो, शांत होकर बैठ जाओ। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने नई नमापनुयात। ये पहले मंत्र पिछले साल आया था। बोले जिसका दुश्चरित्र निवृत्त नहीं हुआ है, जिसका मन शांत नहीं है, समाहित नहीं है, और जो सिद्धियों की चक्कर में है कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो केवल बुद्धि के बल पर इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसा बताते हैं ज्ञान, ज्ञान के रूप से इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। ये बना बनाया माल है। रेडीमेड जिसे बोलते हैं। ज्ञान को बनाना नहीं है, सिर्फ ज्ञान को पहचानना है। कैसे पहचाने? तो कल का जो मंत्र था वो ये था कि येन गंधम येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध और जितने भी इंद्रियों के सुख हैं इनको जो जानता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। बस उसी को आत्मा कहते हैं। ये जिससे इनको सब जानते हैं। अब ये अलग अलग प्रक्रिया से उसी चित्त स्वरूप को बताते हैं। आज बताते हैं चौथा मंत्र है। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ ये नानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वाधीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम च उभव येन अनुपश्यति। स्वप्नांतम माने स्वप्न के पदार्थ या अंत का अर्थ भाष्यकार ने मध्य किया है, माने स्वप्न के भीतर जो आप वस्तु देखते हैं, और जागृतांतम जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था के मध्य में जो वस्तुएं आप दर्शन करते हो, जिसके द्वारा आप इनको देखते हो दोनों अवस्थाओं को, और इन दोनों को भी जिसके द्वारा देखते हो अवस्थाओं को, पूरी अवस्थाओं को। देखो जैसे मैं आप जितने लोग बैठे हैं सबको अलग अलग भी देख रहा हूं और सबको एक साथ भी देख रहा हूं, और अगर यहां कुर्सियां खाली हों तो खाली खाली कुर्सियों को भी देख रहा हूं, और कुर्सी भी न हो तो खाली हॉल को देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि मैं जाग रहा हूं। कौन देख रहा है? बस बोले तो मैं ही देख रहा हूं। अब मैं कहते ही हम शरीर में बैठ जाते हैं, बस यही सारी समस्या है। मैं जैसे ही कहा सो शरीर में आए। अरे शरीर तो दृश्य है, जैसे और शरीर हैं ऐसे ये भी एक शरीर है। बोले आंख ना हो तो कैसे देखेंगे? अच्छा तो मन से देखोगे, स्वप्न में आंख थोड़ी होती है, तो स्वप्न को मन से देखते हो ना। सुषुप्ति में मन भी नहीं रहता है तो सुषुप्ति को काहे से देखते हो? तो देखने का जो यंत्र है आपके पास ये तो बाहर की चीजों को देखने के लिए है, लेकिन असल में तो एक यंत्र उसी में ही फिट है, माने जिसको चित बोलते हैं। चित माने जो सबको जानता, अपने को भी जाने और जो सबको जाने उसको चेतन बोलते हैं। तो पूरी स्वप्नावस्था को, पूरी जागृत अवस्था को, चाहे उभव, दोनों अवस्थाओं को, दोनों अवस्थाओं की संधि को, संधि माने जैसे जागृत अवस्था समाप्त हुई और स्वप्न अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वो जो बीच की अवस्था है उसको संधि अवस्था बोलते हैं। और सुषुप्ति को, ये सुषुप्ति इसमें आया शब्द तो नहीं आया है, लेकिन ये सुषुप्ति इसमें यूं लग जाती है कि अंत का अर्थ यदि अखीर कर लें स्वप्नांतम, तो स्वप्न का अखीर काय में होगा। स्वप्न के एक ओर जागृत में है और एक ओर सुषुप्ति है, ऐसे ही जागृतांतम, जागृत के एक ओर सुषुप्ति है और एक ओर स्वप्न है, तो तीनों अवस्थाओं का बोध इसमें हो जाता है। तो स्वप्नांतम अर्थात स्वप्न के पदार्थ जागृत और सुषुप्ति, और जागृत के पदार्थ और स्वप्न और सुषुप्ति, और इन दोनों के भेद, इन दोनों की संधि, जिसके द्वारा ये सब प्रकाशित होती हैं, नारायण उसको जानो, वही आत्मा है। वो ब्रह्म है कि नहीं? आत्मा है ये तो ठीक है, मैं देख रहा हूं इतनी बात तो होती है, लेकिन मैं जो है वो शरीर में से भी निकल गया तो भी शरीर के भीतर जैसे कोई लाइट जल रही हो और वो सबको प्रकाशित कर रही हो, ऐसा भान करके मनुष्य बैठ जाता है। और ब्रह्म किसको बोलेंगे? कि जैसे एक शरीर में है वैसे ही सब शरीरों में है, एक हंडा यहां जल रहा है, एक हंडा वहां जल रहा है, आपके शरीर में जल रहा है, एक उनके शरीर में जल रहा है, एक उनके शरीर में जल रहा है। अच्छा हमारे और आपके शरीरों के बीच में क्या है? बीच में कुछ है? बोले आकाश है। तो आकाश भी एक शरीर है, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। आकाश यस्य आकाश शरीरम, जिसका आकाश शरीर है, आकाश भी एक शरीर है। जैसे हमारे ये तो पृथ्वी के प्रधान शरीर हैं, और आकाश में आकाश ही प्रधान, आकाश की प्रधानता, दूसरा कोई तत्व नहीं है, ये भी एक शरीर है। तो एक हंडा इस आकाश में भी जल रहा है ना, वो कौन सा हंडा है? बोले वो सूर्य का हंडा है, चंद्रमा का हंडा है, तारागणों का हंडा है। बोले नहीं, सूर्य के भी शरीर हैं, उनके शरीर में कौन सा हंडा जल रहा है? नारायण। तो जो सब शरीरों में रह करके सब शरीरों के बाहर भीतर सबको प्रकाशित कर रहा है वो कोई छोटी मोटी चीज होगी? तो बोले नहीं, महानतम। उसको तुम शरीर के भीतर मत समझो केवल, वो महान है। उस महान को विभुम, व्यापक रूप से, आत्मानम और आत्म रूप से मत्वा जान करके धीरो न शोचति। जो धीर पुरुष है अर्थात जिसकी इंद्रियां संयम में है, जिसकी बुद्धि सुसंस्कृत है, वो फिर शोक नहीं करता। शोक नहीं करता ये नेगेटिव पक्ष है। शोक नहीं करता है तो खुशी मनाता है। बोले यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। कौन सा बार बार जाए ना, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, करता भी कुछ नहीं है, न शुभ करता है न अशुभ करता है। जो सर्वव्यापक वस्तु है नारायण, वो क्या करेगा? सब कुछ उसी में हो रहा है। करना तो ये परिच्छिन्नता को लेकर के है। एक सीमा में जो जकड़ा रहता है वो कुछ हाथ पैर मारेगा। तो करना माने परिच्छिन्न करता जो होता है वो हमेशा परिच्छिन्न होता है। और जो व्यापक वस्तु होती है, विभू होती है, वो करती नहीं है, वो होती है सिर्फ। आकाश करता नहीं है, आकाश में वायु चलती है, वायु में अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि में जल उत्पन्न होता है, ये सब आकाश में ही हो रहा है। जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब मिल करके हमारे आपके शरीर उत्पन्न होते हैं, होते हैं, लेकिन आकाश के सब भीतर ही है। आकाश कुछ नहीं करता है। तो ऐसे अपने आत्मा को महानतम, ये महावाक्य है ये नारायण। महावाक्य माने एक शरीर के आत्मा को जब ब्रह्म बताया जाता है तो उस वाक्य को महावाक्य बोलते हैं। तो एक शरीर में आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखो और सब शरीरों में, अच्छा सब शरीरों में देखो, मैं जाग रहा हूं, आप जाग रहे हो, कहीं कोई सो भी रहा होगा, नहीं तो अमेरिका में समझ लो वहां सो रहा होगा। तो आत्मा जब एक ही है तो यहां तो मैं जो है जागृत अवस्था को जान रहा हूं और वहां का मैं जो है वो स्वप्नावस्था को या सुषुप्ति अवस्था को जान रहा है। तो अगर मैं एक ही है तो मैं एक ही साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं? तो ब्रह्म जो है ये एक है और आत्मा शब्द से परिच्छिन्नता महसूस होती है। इसलिए महानतम ये दो विशेषण दिए यहां, महानतम विभुम आत्मानम। इस आत्मा को महानतम माने ब्रह्म, विभुम माने व्यापक, मत्वा मान करके नहीं जान करके। धीरो न शोचति, जो धीर पुरुष है वो शोक नहीं करता है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ ये नानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वाधीरो न शोचति। अब यहां एतद वैतद है नहीं, लेकिन आप अपने आप लगा लो कि यही है वो आत्मा परमात्मा जिसके बारे में नचिकेता पूछ रहा है। अगले मंत्र में कहते हैं यइमं मध्वदं वेदो आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। यइमं मध्वदं वेदो आत्मानं। देखो ये शब्द जो हैं इनका जो भी शब्द प्रयोग होते हैं ना, तो उनके विशेष अर्थ जो है बुद्धि में अगर आपके नहीं रहेंगे तो आपको ज्ञान का विश्लेषण नहीं होगा। क्या कहना चाहता है मंत्र या श्लोक या दूसरा व्यक्ति, ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसे जीव कहा, मान लो आत्मा कहा, ब्रह्म कहा, अब लगते तो ऐसे हैं कि सब एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन ये फिर तीन शब्द क्यों दे दिए भाई? तो जीव किसको कहते हैं? जो जीवन को धारण करता है उसको बोलते, जो चैतन्य जीवन माने प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको धारण करने वाला है उसको बोलते हैं जीव।